इसी प्रकार से अपने चित्त को लगाओ। मैया के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने उस चीज को रख करके हम लोगों के लिए ये सब दिया है। ऐसे ही चित्त को भगवान ने सब में लगाओ। प्राय वो बताऊंग अंबर, अंबर माने मैया। अरे मैया
मैयारी,
सखी को मैयारी कह रही है तो सखी। मैया कहते हैं माता जी को, यहाँ पर माता जी का बात नहीं अपने। अरे भाई जरा मेरी बात को सुन लो, स्त्री की भाई है। बेटा को कहते अरे भाई जरा मेरी बात को सुन लो, किसी को भी भाई कह देता है वैसे संबोधन। उसी तरह से यहाँ पर प्रेम में विवश होकर के कहो बतांग बतांग माने कितना बड़ी बात
नहीं। बाकी अभी नहीं कितना है
कहो बतांग ओ अंबर, अरे सखी, अरे मैया, किसी को संबोधन है। अरे मैया का माने आश्चर्य से चकित होकर के कह रहे हैं। मुनलो बने विहगा, इस वन में अर्थात वृंदावन में जो विहग हैं अर्थात जो पक्षी हैं, प्रायो मुनलो, ये सब प्राय मुनि लोग हैं। कोई भी चिड़िया में चिड़िया देखने में ऐसे लगते हैं, तू सारी कोयल पपीहा मोर ये सब जितने भी दिखते हैं ये चिड़िया पक्षी नहीं है, ये सभी ऋषि मुनि लोग हैं। कृष्ण एक कीर्तन सदस्य कल्पेयम कीर्तन, कृष्ण ने बड़े प्यार के साथ में उनकी तरफ में देखा, इन देहों की तरफ में, मुनियों की तरफ में देखा और उससे उनके मुख से जो वेणु ध्वनि बजी उठी उसको सुनकर जीते न आरुह्य जे द्रुम भुजान। आरुह्य जिन जिन ब्रह्म रूप पेड़ों की डालों पर वो आरुह्य मैंने बैठे हुए हैं, रुचि प्रवाह, रुचि प्रवाह मैंने कोमल कोमल लाल लाल जो अभी कोमल कोमल पत्ते हैं आम के, अशोक के, बरगद के लाल लाल कोमल पत्तियां होती हैं, बहुत ही कोमल होती है, तो उन पत्तियों के बीच में बैठे हुए हैं रुचिर प्रमा श्रीवंत। वहीं से कृष्ण की मधुर वाणी को सुनते हैं और कृष्ण के रूप माधुर्य को दर्शन करके विगत अन्नवाच, विगत अन्नवाच समस्त बातों को सब कुछ होकर एकदम मुनि जैसे वहां पर बैठे। कल इसकी व्याख्या करेंगे। आज
एघन विदेश श्रीखंड खंड नगर श्रीखंड लिप्तांग हे वृंदारण्य पुरंदर सुरद मंदिर श्यामल कालिंदी प्रिय नंद नंदन परनंदार विंदेक्षन श्री गोविंद मुकुंद सुंदर तन मां दीनमानंदय।
निवासी नंदिगत रामो गर रा
विगतान्य बात और बातों को छोड़कर और बोलना छोड़कर का छोड़कर सब कृष्ण 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 कह रहे ये कह रहे ये तो कह रहे हैं सौभाग्य किंतु कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त और नहीं कर रहे। सनातन गोस्वामी जी टीका कर रहे हैं अनंत जलचर पक्षियों का महात्म वर्णन करके उनसे भी अधिक महात्म वाले पक्षियों की बातें कह रहे हैं। भगवान के लिए वहां के पेड़ों की छाया मानो छत्र छाया है, छाया छाता के समान पृथ्वी मानो छाता उनके लिए बन गई है। बड़ी हरी हरी शीतल सुशीतल छाया है, उसके नीचे कृष्ण जा रहे हैं, गोचारण करते हुए एक वन से दूसरे वन, और पशु पक्षियों की तरफ में प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, और मुरली की ध्वनि भी कर रहे हैं। इन लोगों की स्थिति देख करके ऐसा मालूम होता है कि ये पक्षी नहीं है, ये क्या है, ये मानो मुनि लोग। कौन मुनि? प्राय मुनि, साधारण मुनि नहीं है, विशेष मुनि है, ध्यान करने वाले मुनि नहीं, ऐसे नहीं। आगे ये बतलाएंगे। सो करके विमोहित हो रहे हैं, और इसको देख करके भाव नेत्र से घर में बैठी हुई एक गोपी दूसरी से कह रही, अहो बतांग प्रायो बतांग वत अंग अम्ब, हे अम्ब मैयारी, बंगला में की हो गई माई रे,
मांगो
मांगो मांगो, कितना होगा मैयारी। मैयारी किसको कहेंगे? कोई भी सामने हो न हो, कोई भी न हो, और कोई चीज विचित्र देखा, हृदय भराया, अरे मैयारी मैयारी अपने आप निकल जाएगा, खेत में निकलेगा अथवा
आनंद।
खेत का अर्थ एक होगा और आनंद का अर्थ एक, खेद और आनंद पर समस्त अर्थ ही श्लोक का पूरा अर्थ बदल जाएगा। जब आनंद कहोगा तो एक तरह, और खेद कहोगा तो पूरा अर्थ ही, एक एक शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। खेद है अपने लिए, आनंद है दूसरों का सौभाग्य देख करके, अपने लिए खेद है। मैयारी कहां इनका स्वभाव सौभाग्य, और हमारा कहां दुर्भाग्य। इस तुलना में अपने लिए जब विचार होगा तो खेद आएगा, और उनके लिए सौभाग्य का वर्णन करके देखती हैं तब कहती हैं, बड़े आनंद से भर जाती हैं, और कहती हैं आज तक उन्होंने मानो देखा नहीं, पहली बार देख रही हैं। एक ही चीज का लक्षण है, महाभाव का लक्षण। महाभाव का लक्षण क्या है, क्या है बोला, बोलो तो क्या है बोलो।
अनुराग में ही तो इष्ट वस्तु नवनिर्माण के प्रति माना था, और वहां में देखने वाली से कभी देखा, पहली बार देख रहे थे।
दूसरे का भाव अपने में संक्रमित हो जाता है, और अपना भाव दूसरों में संक्रमित हो जाता है। ये अपने भाव को उन पशु पक्षियों में संक्रमित कर रही है, आरोप कर रही है, देख रही है। ये जो देख रही है सचमुच में उन पक्षियों में है ना इनके अंदर में है?
इनके अंदर,
इनके अंदर है, इसलिए ऐसी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। जाती रही भावना जैसी हरि मूरत देखा दिन तेरे। पंडित जी बहुत सरल सीधे आदमी, बहुत भक्तमान ब्रजवासी, नंबर ही छोटा बदमाश आदमी है, दूसरा देखा है, दूसरों को ठगता है। जाती रही भावना, जो जैसा है उसी रूप में देखेगा। वैसे ही इन गोपियों में प्रेम की महाभाव, महाभाव की अवस्था है। अब ये महाभाव का भाव उन पक्षियों में देख, उनका देखना गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो ठीक देख रहे हैं, किंतु उस स्टेज का कोई दूसरा व्यक्ति श्रवण करने वाला नहीं है, उनके लिए आरोप। सभी माने वो ही रकम अवस्था से जे रकम एरा देखते, एरा सत्य सत्य देखते, এইখানে সে অনুরাগের মধ্যে আসলো, আর বিষয় কি সর্বোচ্চ অবস্থা বলে, আর উস সময় মে উনকি জো অবস্থা হ্যায় वैसे अपनी जैसी अवस्था में ही दूसरों को देखते हैं। और उस समय में यदि वो अत्यंत दुखित हो जाएंगे विरह में, तो उनको देख करके पशु पक्षी की पतंग भी रोने लगे। यह सब उसके लक्षण है। गोपियां अपने प्रेम में भी साधारण लोगों में भी ऐसा देखा जाता है। साधु व्यक्ति सब में साधुकार उत्पत्ता है।
ब्रह्मांड
चोर आदमी दूसरों में चोरी का अभिमान भाव रखता है। साधु आदमी सबको साधु देखता है। कामी पुरुष अपने जैसा ही सबको देखता है। ये ऐसी ऐसा स्वभाव ही है। और गोपियां प्रेम की उच्च शिखर पर महाभाव की अवस्था में है, इसलिए वो देख रही है। वो देख रहे हैं ये मोर पंख जो गिरा है मयूरों ने नृत्य करके प्रेम में विवश होकर के कृष्ण के लिए दिया, अब उसने प्रेम से उठा करके यहाँ पर रख लिया। और यहाँ पर रख लिया इसका भी भाव, यदि राधा जी मिल जाएगी तो उनके चरणों का स्पर्श करेंगे। देखो तो कहाँ पर ले गई, एक साधारण जड़ भी थी। इसलिए वो कह रही है कि वो देखो पेड़ की डाल पर बैठे हैं। ये जो बैठने वाले जो पक्षी हैं, ये पक्षी नहीं, कौन कहता है कि पक्षी है, ये तो मुनि है। परम मोह में, मोह में मैंने प्रेम के मोह में अत्यंत द्रवित हो रही है। धैर्य नहीं है इनमें, धैर्य भी दूर हो गया है। इसलिए यहां पर अहो बतांब मैयारी मायरी मागो इत्यादि कह रहे हैं। किसको क्या कर रहे हैं ये भी होश नहीं है, प्रेम में विवश हो गई है। क्या नीति है क्या नीति नहीं है, वहां पर ये सब चीज नहीं है, उसको ऊपर वो चली गई है। इसलिए सखी को ही माँ कह रहे हैं। यदि कहा जब यशोदा मैया आ गई घट और उनको मैया संबोधन कर रही है, मैया का क्या काम है वहां, मैया वहां नहीं है। इन्होंने अनुवाद में लिखा है किंतु भूल लिखा है ऊपर में सनातन गोस्वामी के टीका में यशोदा मैया का नाम है। आज आपको यह ऐसी बात ये अर्थ में गड़बड़ी है, तो रसाभास हो जाएगा। यशोदा मां नहीं है यहाँ पर, कोई रहे नहीं रहे सखी कही है, सखियों का दल है, इसे सखी को ही संबोधन कर रही है। अथवा सखियों को भी भूल गई, अरे माई जी भैया एकदम अपने आप जब उनका सौभाग्य देखा वो पक्षियों का, तो एकदम विवश होकर के प्रेम से अपने आप ये शब्द निकल पड़ा। ये वृंदावन के पक्षी पक्षी नहीं है, प्राय और भी हैं। कौन कौन पक्षी सब काग हैं, और दूसरे दूसरे पक्षी उनके लिए नहीं कह रहे, इनके लिए नहीं। ये है मुनि है, कौन मुनि, साधारण सौभरी कोटि के विश्वामित्र इत्यादि और दूसरे जो हैं मुनि लोग, वो मुनि है पहला, चारवाक मुनि है, चारवाक मुनि ऐसे सब मुनि लोग, कौआ चारवाक मुनि है और उसी के और भी भाई बंधु सब हैं। वो वृंदावन में नहीं है, वो कहा है वृंदावन का एक दक्षिण भाग वाला है जगह, वहां पर ये दक्षिण भाग में रहते हैं। जैसे वृंदावन के दक्षिण में, दक्षिण भाग में कौन रहते हैं? कौन वृंदावन के दक्षिण भाग में किनके घर और आश्रम है? सब स्वहमवादी लोगों का। तो ये वृंदावन का सबसे निकृष्ट भाग है जहाँ पर कि ये लोग रहते हैं, वृंदावन से बाहर है। इसमें कौन है? भगवत धर्म परायण ऋषि लोग, पराशर, व्यास, नारद, इन लोगों के ऋषि, भागुरी और उस समय के सांडिल्य ऋषि इत्यादि, ये सब ऋषि लोग। ये चाहते हैं कैसे? मोर जैसे के का, के माने कौन? श्रीमती राधिका जी के धैर्यमान, लज्जा इत्यादि रूपी अति उच्च पर्वत को भी चूर्ण विचूर्ण करने वाले ये कौन है? बस अकेले कृष्ण है। का प्रेम के मत्त गजराज, इनके इनको लिए अंकुश स्वरूप कौन है? श्रीमती राधिका के अतिरिक्त के का कोयल पति है, मोर सूर सारी, सबसे सुंदर कौन है? कृष्ण है। और ये कृष्ण नहीं है, कृष्णा जी है। सारी कह रही है कृष्णा को, वो कह रहा है श्याम को, ये कह रही है श्यामा जी को। सबसे रूपवती कौन है, रूपवान कौन है? कृष्ण है, सुख ने कहा। और सारी ने क्या कहा? रूपवान कभी हैं यदि राधा जी उनके साथ हैं, इनके बिना अकेले रूपवान नहीं है। सबसे विदग्ध रसिक कौन है? कृष्ण है। यदि राधा जी नहीं है, ये सब सुख सारी का द्वंद महाप्रभु सुनते हैं और कोई नहीं समझेगा।
मयूरी अपेक्षा मयूर देखते नहीं सुनते, मयूरी अपेक्षा मयूर देखते सुनते, मुर्गी अपेक्षा देखते सुनते।
हरणियों की अपेक्षा हरिण सुंदर होते हैं, नहीं
पोसी जाती है सोची जाती है,
दोनों में अंतर है। तो ये सब भगवत धर्म परायण, भगवत धर्म किसको कहते हैं? जिसको भगवान ने स्वयं अपने मुख से
भगवता
जगत के कल्याण के लिए कहा है। और उनमें सबसे अधिक व्यास के रूप में भगवान ने भगवत्ता का सार जो वर्णन किया है जिस शास्त्र में, अतः भागवत शास्त्र को, वो सबसे ये भगवत शास्त्र है। इससे बढ़कर के और कोई शास्त्र नहीं है, कोई धर्म नहीं। इसी को कृष्ण वृंदावन में रास के रूप में प्रवर्तित करते हैं, सबसे उच्च धर्म को, जिसको समझने वाले बहुत कम हैं। उनको समझने वाले ये जितने भी हैं वृंदावन के, पेड़ की डाल पर, कौन सी पेड़ की? आम्र के और कदम्ब के वृक्षों पर ये सब ऋषि बैठे हैं। प्राय प्राय शब्द बाहुल्य अधिकांश, यहाँ पर प्राय भक्त लोग हैं। मतलब क्या? दो चार कर्मी यानी योगी, सकाम, ये सब हो सकते हैं, किंतु प्राय माने अधिकांश लोग भक्त हैं। इसलिए यहाँ पर कहा साधारण मुनियों की भांति ये नहीं है, उनसे श्रेष्ठ हैं। साधारण मुनि में कोई होता है ज्ञानी, कोई होता है कर्मी, कोई होता है योगी, कोई कुछ होता है, सांख्य योगी होते हैं। योगिनां सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धामान जो भजते मां समे युक्त समूहत, उनमें भी सबसे श्रेष्ठ मुनि योगी ये लोग हैं जो अंतरात्मा से हमारा भजन करते हैं। तो इन लोगों में जैसे श्यमन ऋषि हैं, नाम सुना है? कोई धर्मांतरी ऋषि है, धर्मांतरी आयुर्वेद के ज्ञाता, कोई भरत मुनि है नाट्यशास्त्र के मुनि, कोई ये जैसे पहले बताया था वो चार्वाक मुनि है, वो योग के प्रतिष्ठाता पातंजलि मुनि है, भक्ति सेनों का कोई भी संबंध नहीं किंतु मुनि है, भक्ति से कोई संबंध नहीं, भक्ति में बहुत से लोग भक्त मुनि हैं किंतु सभी रस के रसिक नहीं है। विश्वामित्र मुनि ने रामचंद्र जी की सेवा की और वशिष्ठ मुनि, ये दोनों मुनि है ना, मुनि, और वृंदावन के सांगल्य मुनि हैं, भागुरी मुनि हैं और कृष्ण समंदारद मुनि हैं, इनसे उन लोगों का क्या संपर्क है, दोनों में वैशिष्ट किन का, वो लोग दाक्ष और वात्सल्य इस रस में कुछ है, और यहाँ के मुनि लोग सख्त से ऊपर वात्सल्य से भी ऊपर तक के थी, ये लोग मनन करने वाले मुनि हैं। राधा कृष्ण सो रहे हैं, उनको कौन जगाएगा, कौन पक्षी, कौवे जगाएंगे, कौवे नहीं जाएंगे, मयूर जगाएंगे, कोयल जगाएगी, सुख जगाएंगे, सारी जगाएंगे, ये लोग मुनि क्यों हैं? मुनि का हेतु क्या है? मननशील, मन में स्मरण का, क्या करते हैं ये? कृष्ण वेणु को सुन करके जो मधुर स्फुट ध्वनि निकलती है, ऐसी अनर्वचनीय, वचन से इसकी महत्ता नहीं बतलाई जा सकती, वचनों के द्वारा इसकी महिमा नहीं कह सकते, ऐसे अनर्वचनीय मधुर को कलाध्वनि की महिमा किस लिए? बहुत से अर्थ हो सकते हैं, जिस अर्थ की कल्पना नहीं कर सकते हैं कलाध्वनि से वो उसका अर्थ हो जाएगा। रसिक व्यक्ति चाहिए उसका अर्थ निकालने के लिए। जल प्रवाह गिर रहा है ऊपर से नीचे, वहाँ पर प्रेमी प्रेमिका दो बैठे हैं, वहाँ से जो धारा गिरती है कलकल की ध्वनि होती है, वो क्या सुनेगा? और कोई एक दुखी व्यक्ति वहाँ पर प्राण छोड़ने के लिए वहाँ पर गया हो और वो सुन रहा है, वो क्या सुनेगा? काल का भैरव नाद वहाँ पर सुनेगा। और जो प्रेम वाली है वो क्या सुनेंगे? उस रूप में सुनेंगे। तो मधुर अस्फुट ध्वनि सुनकर वृंदावन के गोप गोपियों की गाथा को श्रवण करते हैं, ये बंसी की ध्वनि सुनते हैं और क्या करते हैं? कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनते हैं। यहाँ पर गोप गोपी तीनों सुन करके क्या करते हैं? पहले आंखों से जो कहां से मधुर ध्वनि आती है उसको देख लेते हैं, और देख करके देखते हैं कि आंख से देखने से या तो उनका मुखारविंद देखा जाएगा, या वस्त्रक्षव देखा जाएगा, या पैर का प्रदेश देखा जाएगा, एक जगह एक समय में सभी कुछ नहीं देखा जा सकता, इसलिए आंखें बंद इसलिए करते हैं, पूरा एक साथ सबको लेकर के आंख में बंद कर लेते हैं, पूरे मुख और पूरे को एक साथ में, और कान से सुन रहे हैं, कान से ही पी रहे हैं, और मन के द्वारा उनका चिंतन कर रहे हैं। कैसे श्रवण करते हैं? कृष्ण स्थितम कृष्णेन इच्छितम, स्वयं नहीं देख रहे बल्कि कृष्ण के द्वारा देखे जा रहे हैं, ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ से कृष्ण की नजर उन पर पड़े, इसलिए उनके द्वारा दृष्टि को प्राप्त कर रहे हैं। मानो आज तक कृष्ण को उन्होंने देखा ही नहीं हो, इस नए उत्कंठित होकर के नव नवायमान रूप में उनको देख रहे हैं और कृष्ण की दृष्टि भी पड़ गई। तो ऐसी जगह में बैठे जहाँ सूखी डाल हो, वहां से तो देखा जा सकता नहीं, रुचि रप प्रवाना कोमल कोमल पत्तों की झोंक में बैठे हुए हैं, जहाँ से उनकी आंख और मुख ठीक है, जहाँ से कृष्ण को वो देख सकते हैं और कृष्ण की नजर भी इन पर पड़ सकती है, किंतु दूसरा न देख ले, इस आदान प्रदान में दूसरा कोई न देख ले, ये प्रेम का चिन्ह है। इस समय पक्षी, समस्त पक्षी दूर से कृष्ण के वेणुनाद को सहन कर अपने अपने नीर से खोते से, खोता में क्या होता है, घोंसला, घोंसले को से निकल जाते हैं और निकल करके पास ही डालियों पर बैठ जाते हैं। कौन सी डाल पर? यहाँ पर नए नए कोमल कोमल लाल लाल पत्ते अभी पेड़ों के निकले हुए हैं। कृष्ण के निकट वहां से माने कृष्ण को देखते हैं, कोई बाधा विघ्न न रहे, ये रुचिरत प्रवाह किस लिए कहा? पास में सुंदर में वो लाल लाल पत्तों में मधु भी होती है, मधु बच्चे लोग चाट लेते हैं मधु, और बड़ी कोमल होती है, उसके पत्ते भी पक्षी लोग खाते हैं, किंतु विगतान्न वाच, दूसरी तरफ में इनकी दृष्टि ही नहीं है, बस उसी में अपने को छिपाए हुए केवल कृष्ण की दृष्टि हम पर पड़े और उनको मधु इत्यादि उपान नहीं कर रहे, मंजरी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, चुपचाप वहीं से आधी आंख बंद करके उनको देख रहे प्रेम भरी नेत्रों से। कहते हैं कि सुखी जगह में नहीं है, सरस वो डालिया है, वृंदावन के पेड़ पौधे सूखे नहीं होते, वो कैसे होते हैं? पुष्प पत्र और फलों से भरपूर है, रस में है, सूखा सूखा वहां नहीं है। यद्यपि वृक्ष शाखा के अब पत्र पूर्व इत्यादि स्थानों में बैठ करके दर्शन कर सकते थे, यहाँ पर की पत्ते नहीं है, डालों से देख सकते, किंतु वहां पर नहीं, पत्र और पुष्पों के बीच में ये है, अनायासी जहां से कृष्ण का दर्शन हो सके, कृष्ण की बंसी भी जहां से श्रवण की जा सके, पत्र पुष्प इत्यादि स्थान में अत्यंत निर्जन है, दूसरा कोई कोई पशु पक्षी नहीं आएगा, बस अकेले वहां से देख रहे हैं, सभी लोग ऐसा ही समझ रहे हैं। जब गोपियां कृष्ण के बंसी के पीछे पीछे जब भगी, अकेले अकेले चल रही हैं, कोई दूसरी हमारे साथ में ऐसा नहीं जान रही, ऐसे ये पक्षी भी मुनि है ना, मुनि एक साथ में ध्यान लगाएंगे नहीं, उनके लिए निर्जन स्थान अत्यंत जरूरी है, तो ये मुनि तो है किंतु वहां से उन पत्तों की पुष्पों की बीच से वो देख रहे हैं, किंतु पत्र पुष्प फल इत्यादि का आहार या भोग नहीं कर रहे। कृष्ण के अतिरिक्त विगतान्य वाच, कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त और कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे, यहां पर कह रहे हैं वेद विस्तृत है, वेद में वेदों की बहुत से 1800 ना कितनी 11000 कितनी शाखाएं
जैसा
धनु वेद इत्यादि कर्मकांड बहुत सी शाखाएं, ये उन शाखाओं पर नहीं बैठे, वृंदावन वाली शाखा में बैठे हैं, कर्म प्रकाशक या दूसरे धनुर्वेद इत्यादि की शाखा पर डाल पर नहीं बैठे, जहाँ से कृष्ण का साक्षात्कार हो सकता है, कौन सी डाल है ये? भक्ति रामानंद में ऐसी भक्ति रामानंद दर्शय भक्ति वसो पुरुष भक्ति रेव पूरी भक्ति की डाल से ही उनको देख सकते हैं। वो भी भक्ति की डाल से नहीं, भक्ति में भी कौन डाल? प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति की डाल से भी नहीं देखा जाएगा। ब्रज की प्रेमा भक्ति की डाल हो तब देखा जाएगा। अयोध्या में भी प्रेम है, वैकुंठ में भी प्रेम है, बिना प्रेम के तो वैकुंठ ही नहीं होगा। किंतु उस प्रेम से काम नहीं चलने का, वो प्रेम वैकुंठ में लेकर के छोड़ देगा, कोई अयोध्या तक छोड़ देगा, कोई द्वारका तक लेकर के मथुरा तक छोड़ देगा। किंतु वह डाल जो वृंदावन में गई है, उस डाल पर चढ़ करके तब फिर वो होगा उनका दर्शन, नहीं तो नहीं होगा। बिना रूप गोस्वामी के विचारों का अनुगमन किए हुए कोई भी ब्रज में नहीं जा सकता। रूप गोस्वामी का ही विचारों का अनुगमन करना चाहिए। रूप गोस्वामी के विचारों का अनुगमन माने क्या? क्या और भक्ति होती है मर्यादामयी और दूसरी होती है
रागमयी।
जिसमें मर्यादामयी भक्ति है उससे ये नहीं देखा जाएगा कृष्ण को, नंदनंदन को नहीं देखा जाएगा, वहां से नारायण को देखा जाएगा। अधिक से अधिक यदि सौभाग्य आएगा तो राम को देख सकता है, सिद्धि होने पर वो भी कृष्ण को नहीं देखा जाएगा। कृष्ण को देखने के लिए ब्रज भक्ति चाहिए, जैसा रूप सनातन जी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनकी परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद तक ये सब लोग किए। मर्यादामयी भक्ति के द्वारा प्रेम शिथिल होता है, उसके द्वारा नहीं होगा। इसलिए प्रेममयी शाखा वो भी ब्रज रस से रसिक सिक्त होने वाली जो डाल है उस पर बैठ करके कृष्ण का सत्ता उसके ऊपर में ये बैठे हैं और सुनते क्या है? कृष्ण की मधुर मुरली। और देखते क्या है? कृष्ण का सुंदर मुखारविंद देखते हैं। अनंत शाखा समेत वेदों में भी क्यों वेद खल्प तरु की निगम कल्प तरु गरित मुखम फलम सुखमुखादी। बस इसी शाखा में बैठने से और कोई नहीं। बिना ब्रज की भक्ति के किसी भी दूसरी भक्ति से नहीं देखा। किंतु सभी मानते हैं कि हम ही केवल साधु, हम ही केवल साधु मर्यादामयी भक्ति करने वाले, जैसे रामानुज वाले उसी को ही अपना मर्यादामयी भक्ति को ही सिद्ध। हनुमान के अनुगत रहने वाले अयोध्यापति राम के प्रति ही उनकी भक्ति है, वो वशिष्ठ नहीं समझ सकते। और तेईस शाखा उसी शाखा का विचित्र पल्लव आदि स्थानीय भक्तांग सुंदर पल्लव कोमल है ना, भक्ति कोमल वृत्ति है, लाल कारण है माने अनुराग है इस कारण। इसी शाखा को जिस पर यह अनुराग लगा हुआ है और फल क्या लगा है? प्रेम फल, ब्रज फल। अतः सत्सल्य बात्सल्य और मधुर उसमें भी मुख्य फल है वही मधुर रस वाला। इसलिए वहां पर वो वेदों का अध्ययन करके भी उनसे उपरत रह करके केवल मात्र इसी शाखा को वो आश्रय की हुए हैं। अथवा यह भी होगा कि वेदों को अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में वेद का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, उत्तम रूप से विचार करके उन कर्मों को छोड़ करके केवल कृष्ण भगवत्ता की सार है, इसको जान करके उसी शाखा से प्रेममयी शाखा से कृष्ण का दर्शन शुरू कर रहे हैं। इसलिए साधारण ये मुनि नहीं है। क्या करते हैं, गान सुनते हैं और गान करते भी हैं, जैसे कोयल, मोर, सूप, सर, ये सब। इसलिए उनकी वेद अध्ययन में आसक्ति नहीं होती। वेद का फल श्रीमद् भागवत है, भागवत में भी दशम स्कंद उसका हृदय है, बस उधर में उनकी इच्छा था। पर आंख बंद कर भाव में विभावित होकर के समस्त क्रियाओं को छोड़ करके नाम संकीर्तन कृष्ण कृष्ण कर बंसी की ध्वनि है।
प्रभाव सबसे व्याख्या दिले चिंता अवस्था दिले
इसे केवल नाम संकीर्तन के द्वारा ही इस नंदन को पाया जाएगा। और वो नाम संकीर्तन कौन सा? एक दिन देखा हमको एक बंबई में एक भक्त बड़े प्रेम के साथ में हमको रामानी संप्रदाय का कौन है उनका पद है उनके श्लोक सब है। हे रामानुज, हे ये सब श्लोक बड़ा सुंदर तरह से संयुक्त स्वर में सुना रहे सुंदर स्वर था, करुण भी है, किंतु राधा रमन हरि गोविंद जय जय में और उसमें कितना अंतर है। राधे जय जय माँ भवदई गोकुल तरणी मंडल महिते, राधे जय जय माँ करुणानुकुरमयी करुणा भरी सनक सनातन भर, जय राधा माधव जय कुंजी। ये सब कीर्तन में रुचि उनकी नहीं होगी, उन मुनियों की। इसलिए उससे बहुत वैश्विक चीज का एकांतिक रूप में राधा कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर के ऐसे ही गानों का श्रवण करते हैं, कृष्ण की मुरली ध्वनि को सुनते हैं और उनके सामने दूसरी चीज नहीं आएगी। इसलिए स्पेशल मुनि उनके लिए घर है। और सुन करके और देख करके फिर आंखों को बंद करके, आंखें बंद नहीं अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं प्रेम से, नाम संकीर्तन में तत्पर हो जाते हैं और सब बातें छोड़ देते हैं। अथवा भगवत पारायण मुनि बोले वन में पक्षी होकर के बेरुनाथ का श्रवण कर रहे हैं, अथवा स्वामीपाद जी की व्याख्या सनातन को संतर कर से व्याख्या स्वामीपाद माने सिद्धर स्वामी जी का। जो लोग आत्मा राम मुनि हैं, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वो कौन है? अपने आत्मा को ही ब्रह्म जान करके उसमें रमण कर रहे हैं, आत्मानंद को ही ब्रह्मानंद कहते हैं, बस उसी में संकुलित जा रहे हैं, हम ब्रह्मास्मि इत्यादि कहते हैं। वे वृंदावन में पशु पक्षी नहीं हो सकते, किंतु ये कह रहे हैं कि पहले साधन भजन में जो आत्मा राम मुनि थे वही लोग मालूम होता है कि भी आकर के मुनि बने। कैसे? सुखदेव गोस्वामी ने अपने को कहा है कि मैं पहले ब्रह्मनिष्ठ मुनि था, साधारण मुनि था, किंतु व्यास जी ने कृपा करके हमको मेरा उद्धार करके और इस रसमय भूमि में हमको ला दिया, नहीं तो पहले मैं क्या नैर्गुण में अति परिनिष्ठित हो, नैर्गुण में निश्चित था परिनिश्चित था, किंतु व्यास जी ने कृपा करके उनको इस श्रीमद भागवत रूपी निगम कल्प स्वरूप के फल में उनको आकृष्ट कर दिया। यहाँ पर प्राय शब्द का बोलने का अर्थ यह है, आत्मा राम मुनियों में भी जो दुर्भाग्यवश जो कि इनमें रुचि नहीं होती है वो लोग मुनि नहीं, बल्कि उन लोगों में सुखदेव गोस्वामी जैसा और कौन और कोई है?
संसार में।
जो पहले ब्रह्म में सनक सनातन सनंदर, ये लोग भी ब्रह्म ज्ञान में परिनिष्ठित थे, पीछे से ब्रह्मा जी की कृपा से ये लोग नारायण के प्रति आकर्षित हुए थे। इस प्रकार से ये लोग वृंदावन में पशु नहीं हो सकते हैं, पक्षी नहीं होते, वेद की ऋचाएं हो सकती है। बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पर कृष्ण का दर्शन करने के लिए और सुनने के लिए वहां पर ऐसे भी, वहां के पशु पक्षी क्या, कीट पतंग भी वहां के क्या है, भ्रमर कौन है वो, और सब आत्माराम और ये योगियों से लाखों गुना श्रेष्ठ हैं, भ्रमर भी। इसलिए आत्माराम मुनि जो कि अपनी सिद्धि होने पर प्राप्त होते हैं, उनसे इन पक्षियों को अधिक सुख है, इसलिए उनसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं। वृंदावन स्थित भ्रमर इत्यादि भी, कीट भी भगवत भक्त पर मुनि से, भगवत भक्ति पर मुनि से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कृष्ण का संयोग पाते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, उनके अंगों का सुगंध लेकर के उड़ते हैं। इसलिए और जितने भी मुनि हैं या दूसरी जगह के जो पक्षी हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है, उनसे ये श्रेष्ठ हैं। इसलिए बलवासी होने से ही सभी मुनि हो जाएंगे ऐसी बात नहीं, भक्त होने से ही सभी वैसे हो जाएंगे ऐसा कोई बात नहीं।